खुदावन के जलाली ने आप नाम में आप सबकी सलामती हो। आए हम चंद लम्हों के लिए खुदावन के हुजूर झुके हैं और अपने अपने दिल की हालत का जायजा लेंगे ताकि उसके कलाम के भेदों को, सच्चाइयों को, उसकी रहनुमाई को समझने वाले बने। सो दलेरी के साथ उसके फजल के तख्त के सामने आएंगे क्योंकि उसका रहम, उसका फजल, उसकी शफकत हर वक्त ईमानदारों को मुहैया है। सो इस बात को याद रखते हुए खामोशी में झुक जाएंगे। खुदा बाप, आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र करते हैं और आज की सुबह में खुदा बाप तुझे गुड मॉर्निंग कहते हैं और तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने ये मौका दिया कि हम सब मिलकर तेरे हजूर हाजिर हों। आज के कलाम के हिस्सा को ले, हम सबको बड़ी बरकत दे और सारा जलाल तेरे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम को मिले। सुनने वालों को अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल कर और खुदावन मुस्खा अक्सार को इस्तेमाल कर, जो कुछ आज तूने तैयार किया है अपने तख्त से खुदा खुदा, अपने आसमान से जो आसमानी रोटी तूने तैयार की है, हम सबको नोश करने की हिकमत और तनाई दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आपको याद होगा, हम लूका की इंजील उसका 19वां बाप उसकी 11वीं आयत की 27वीं आयत तक जो तमसील है उसमें से सीख रहे हैं और हमारा जो पिछले दिनों से मजमून चल रहा है, जो हम हिस्सा सीख रहे हैं, जो हमारा टाइटल है वो क्या है कि हम सब इस जमीन पर मुसाफर हैं और ये दुनिया हमारा हकीकी वतन नहीं, हमारा हकीकी वतन आसमान है, यानी कि हम आसमान के शहरी हैं, हमारी हकीकी सुकूनतगाह आसमान है। सो हम इस जमीन पर मुसाफर हैं और हमारा सफर सलीब से शुरू हुआ है और हर एक ईमानदार सलीब से अपने सफर को शुरू करता है, जो उस जलाल, उस अजमत और उस अब्दी जलाल में जो नाम उड़झाने वाला सेहरा है खुदा की हजूरी में खत्म करता है। सो हम सीख रहे हैं कि हम मुसाफिर हैं, हमारा सफर सलीब से शुरू हुआ है और अब्दी जिंदगी में उस जलाल के तख्त के सामने, उस जलाल में जो खुदा की अब्दी जिंदगी तैयार की गई है उसमें खत्म होगा। सो इसके दौरान जो वादी है, जो घाटी है, जो सफर है, जो इस दुनिया को जाहिर करता है, इस जमीन पर जिंदगी गुजारना है, इसे गुजारने की जरूरत है और इस वादी में से जो मुश्किलात की है, जिसे मौत के साया की वादी कहा गया है, जिसे आंसुओं की वादी कहा गया है, जिसे तंग रास्ता कहा गया है, जिसे मसीही जिंदगी की दौड़ कहा गया है और जिस पर आज हम सीख रहे हैं मसीही जिंदगी का सफर कहा गया है। सो हम मुसाफर हैं और हम इस जमीन पर अपने खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए, उसकी नुमाइंदगी करने के लिए पैदा किए गए हैं और आप में से हर एक के लिए खुदा का मकसद है। हम यहां पर घोड़ों खच्चरों की तरह बिन मकसद के लिए नहीं छोड़े गए, बल्कि हमें एक अजीम मकसद दिया गया है और उस मकसद को पूरा करने के लिए हमें बहुत सी नेमतें, बहुत सी बरकात और बहुत बड़ा हक मिला है, जिसमें क्या है, हम खुदा के खानदान के लोग हैं और फिर हम मसीही क्या हैं, मुसाफर, जिसे एलची कहा गया है। सो इस वादी में से गुजरने के लिए, जैसे मैंने आपको कहा, ये मसीही जिंदगी के सफर की वादी दुखों से, मसीबतों से, मुश्किलात से, अजमाइशों से, इम्तहानों से, लानतान से, बीमारी से और मौत के सामना से और बहुत तरह की दूसरी बातों से पुर है और इसके साथ साथ खुशी, इत्मीनान, सब्र, तसल्ली और बहुत तरह के खुदा के बहुत ही बड़े अजाज और नेमतें, बरकतें हमें हासिल हैं। सो इस वादी में से गुजरने के लिए हमने पिछले दिनों में ये बात सीखी कि हमें खुदा की हिकमत की जरूरत है। सो मेरे साथ निकालें लूका की इंजील में ही हैं हम, इस पर बाद में देखेंगे। सो मेरे साथ निकालें यकूब का खत, उसका पहला बाप। हमने वहां पर सीखा था कि हमें क्या करने की जरूरत है, खुदा से बातचीत करने की जरूरत है, ताकि इस तारीकी के आलम में, इस नाफरमानी और नादानी से पुर माहौल में हमें खुदा की हिकमत की जरूरत है, और उसकी हिकमत बाइबल मुकद्दस के वसीला से हमें हासिल होती है, और उसके लिए मांगना जरूरी है। इसीलिए जब भी हम कलाम खुदा को सुनते हैं, सुनने के लिए तैयार होते हैं, हम कहते हैं कि अपने पाक रूह के वसीला से हमें हिकमत और दनाई दे, ताकि तेरी बातों को समझें। सो ये बात हमने पहले सीखी थी। आज हम सीखेंगे इस मसीही जिंदगी के सफर में, हमने ये बात पांचवी आयत से सीखी थी, लेकिन तुम में से किसी में हिकमत की कमी हो तो खुदा से मांगे, जो बगैर मलामत किए फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी, मांगने वालों को दिया जाता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 7:7 उसकी 7वीं आयत में, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। सो मांगने वालों को मिलता है, जो कोई मांगता है उसे मिलता है। सो हमें खुदा से बातचीत करने की जरूरत है, सारे सफर में, सारे मुश्किलात में, तकलीफों में, इम्तहानों में। आज हम दूसरी बात सीखेंगे, वो क्या है, सबर। मसीही जिंदगी के इस कठिन, इस मुश्किलों के सफर में हमें सबर की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। सबर हमारी जिंदगी में उन तमाम आजमाइशों के बायस पैदा होता है जिसमें से हम गुजरते हैं। सो हम देखते हैं अय्यूब, यकूब उसका पहला ही बाप, उसकी दूसरी आयत में यकूब कहता है, ए मेरे भाइयों, जब तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझो कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। हमें खुशी मनाने की जरूरत है, हमें अफसुर्दा, हमें मायूस होने की जरूरत नहीं जब हम आजमाए जाएं, जब हम तरह तरह की मुश्किलों में, आजमाइशों में पड़ें। तरह तरह से मुराद मुख्तलिफ करों रंगों की मुश्किलात हो सकती है। वो मुश्किलात हमारी जिंदगी में, आजमाइश वो हमारी जिंदगी में रुपए पैसे की कमी की हो सकती है, वो आजमाइश हमारी जिंदगी में बहुत दफा, जिस तरह दाऊद नबी आजमाया गया और वो क्या हुआ, गुनाह में मुब्तला हुआ, हमारी जिंदगी में ऐसी आजमाइश हो सकती है। बहुत दफा हमारी जिंदगी में मूसा नबी की तरह की जैसी आजमाइश हो सकती है। आजमाइशें बहुत तरह के रंग रखती हैं। आजमाइश झूठ बोलने की हो सकती है, आजमाइश बदनजरी की हो सकती है, आजमाइश बेईमानी की हो सकती है, बहुत तरह की आजमाइशें आती हैं। लेकिन जब हम उन पर गालब आते हैं, उन मुश्किलात में, उन तमाम आजमाइशों में, आजमाइश हमें मौत की धमकी की हो सकती है, मसीह के लिए दुख उठाए जाने की हो सकती है, मसीह के लिए लानतान उठाए जाने की हो सकती है, जिसके बारे में यीशु मसीह ने अपना पहला पैगाम जमीनी उसकी अपनी खिदमत में उसने दिया, और मत्ती 5:5 उसकी 11वीं और 12वीं आयत में यीशु मसीह ने यही बात कही जो यहां पर यकूब यीशु मसीह का बंदा कहता है कि तुम तरह तरह की आजमाइशों में पड़ो तो उसको ये जानकर कमाल खुशी की बात समझो। यही बात यीशु मसीह से उसने सीखी। जब यीशु मसीह ने तालीम दी तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर लोग मेरे सबब से तुम्हें ना हक सताएं, तुमको बुरा भला कहें, तो तुमको क्या करने की जरूरत है? 12वीं आयत में लिखा है शादमान होना क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। उन लोगों ने पहले नबियों को भी इसी तरह सताया और तुमको भी सताएंगे। सो यकूब के जहन में यीशु मसीह का वो पहला पैगाम है और हमें भी याद रखने की जरूरत है कि हर तरह की मुसीबत में ये बहुत मुश्किल बात है कि खुश हों। खुशी से यहां से मुराद है यानी कि इत्मीनान रखना कि हमारा छुड़ाने वाला, हमारा निजात दहिंदा, उसका हाथ हम पर भरा हुआ है। उसने हमें तन्हा या यतीम नहीं छोड़ दिया। तो यहां पर यकूब यही कहता है कि कमाल खुशी की बात समझो कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करती है। सो इस मसीही जिंदगी के सफर में हमें सब्र की बहुत ज्यादा जरूरत है। और सब्र का मतलब है साबित कदम होना, बर्दाश्त करने की कुव्वत होना, सब्र या तहम्बल या इत्मीनान होना। और ये किस तरह हासिल होगा? खुदा के कलाम के वसीला से, खुदा के कलाम के वसीला से। सो हमें मसीही जिंदगी के इस सफर में सब्र की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि सब्र से हम अपनी जानें बचाए रखेंगे, सब्र से हम अपनी जिंदगियों को महफूज रखेंगे, सब्र से हम अपनी जिंदगी का नफा उठाएंगे। तो मेरे साथ एक हवाला देखें, लूका उसका 21वां बाप उसकी 19वीं आयत में यीशु मसीह यहां पर बात कर रहा है उस आने वाले मुसीबत के दौर में जो इस दुनिया पर आएगा। और यीशु मसीह यहां पर कहता है लूका 21वां बाप उसकी 19वीं आयत में, जब इस जमीन पर कलीसिया नहीं मौजूद होगी इस दौर में, लेकिन सीखने के लिए कि सब्र क्यों जरूरी है जब तक कि हम इस जमीन पर हैं। सो इस दौर में जहां पर यीशु मसीह लूका 21वें बाप में बात कर रहा है, ये दौर जब कलीसिया आसमान पर होगी तो जमीन पर ये मुसीबत का दौर होगा जिसमें कौमें कौमों के खिलाफ जंग लड़ेंगी और हर तरफ दहशत, हर तरफ मौत, सताया जाना और बर्बादी और बहुत कुछ होगा। तो यीशु मसीह कहता है 19वीं आयत में, अपने सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। और ये आज हमारे लिए सीखने का मौका है कि हम भी अपने सब्र से अपनी जानों की हिफाजत करेंगे उन तमाम झूठों से, उन तमाम अबलीस के जलते हुए बहकाने वाले सारे मंसूबों से जब हम सब्र करेंगे। बहुत दफा जब हम बेसब्र होकर सोचते हैं कि हम को ये करने की जरूरत है, ऐसा किसी ने कह दिया, ये सोच आ गई, फलां सोच आ गई, तो हमें सब्र करने की जरूरत है क्योंकि हम अपनी रूहों की, अपनी जानों की निगाहबानी करेंगे और अपनी रूहों को, अपनी जानों को बचाए रखेंगे। सो दूसरा हवाला मेरे साथ देखें, सब्र मसीही जिंदगी के इस सफर में, इस दुनिया की भीड़ में से, इस दुनिया की वादी में से जो के तारीकी की वादी है, जिसमें बेवफाई है, जिसमें हाँ बहुत ही ज्यादा मुसीबतें और कठिन रास्ता है, इसमें सब्र की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। रोमियो 5वां बाप उसकी मेरे साथ निकालें 3री आयत से, रोमियो 5वां बाप उसकी 3री आयत। यहां पर खुदावंद का बंदा पालूस रसूल हमें सिखाता है, 3री आयत में लिखा है, 2री आयत से आपके लिए पढ़ूंगा, जिसके वसीला से, पहली से पढ़ूंगा, जब हम ईमान से रासबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से सुला रखें, जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई जिस पर कायम हैं और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। हमें खुदा के उस فضل کے باعث اس تک رسائی یعنی کہ پہنچ حاصل ہے. ہم جب چاہیں خدا سے بات کر سکتے ہیں. اور یہ کس طرح ہیں؟ آپ کے ایمان کے باعث آپ راست باز ٹھہرے ہیں, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بنے ہیں, اور ہمیں خدا کے تخت پر جانے کی ہر وقت کیا ہے؟ اجازت حاصل ہے. اب جب چاہیں خدا سے بات کر سکتے ہیں. سو تیسری آیت پر غور کریں. یہاں پر پالوس رسول کہتا ہے اور صرف یہی نہیں, کہتا یہ نہیں کہ تم صرف خدا کے بیٹے ٹھہرے یا تم کو خدا کے تخت پر پہنچ حاصل ہے, اور صرف یہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخر کریں. پالوس کے ذہن میں بھی وہی بات ہے جو یعقوب کے ذہن میں ہے کہ مصیبتوں میں فخر کریں, یعنی کہ سادمان ہوں, یعنی کہ خوش ہوں, یعنی کہ ثابت قدم رہیں. فخر کریں یہ جان کر کہ مصیبتوں سے صبر پیدا ہوتا ہے. مصیبت اسی لیے ہماری زندگی میں آتی ہے تاکہ ہم روحانی طور پر مضبوط ہوں. اور یاد رکھیں, اس بات کو یاد رکھیں, جب بھی آپ پر مشکل, جب بھی آپ پر تکلیف, سو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں, اسے یاد رکھیں, جب بھی مصیبت, جب بھی دکھ, جب بھی تکلیف آپ کی زندگی میں کسی طرح کا حملہ آتا ہے تو اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا کی اللہ ہی مرضی کے بغیر آپ کو کوئی بھی چھو نہیں سکتا. اگر آپ کسی دکھ میں سے گزرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح آپ کی محافظت ہے. یسوع مسیح میں آپ چھپائے گئے ہیں. یسوع مسیح میں آپ کو اس کی راس بازی کی پوشاک میں لپیٹا ہوا ہے, اس کو آپ نے پہنا ہوا ہے. وہ آپ کا بختر ہے. جیسے فوجوں میں جب فوجیں لڑتی ہیں تو ان کی شیلڈ جسے بختر کہتے ہیں, یعنی کہ سامنے سے آنے والے ہر طرح کے تیر اور ہتھیاروں سے ان کو بچاتی ہے. یسوع مسیح آپ کی سپر ہے, اور اس کی مرضی کے بغیر آپ کو کچھ بھی, کوئی بھی چیز چھو نہیں سکتی جب تک وہ اجازت نہ دے. جب تک یسوع مسیح کسی چیز کو اجازت نہ دے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکتی. سو پالوس رسول کہتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ مصیبت میں فخر کریں یہ جان کر کہ مصیبت سے صبر پیدا ہوتا ہے. اور چوتھی آیت کو دیکھیں, رومیو 5:4 اس کی 4 آیت, اور صبر سے پختگی اور پختگی سے امید پیدا ہوتی ہے. پختگی کا مطلب ہے یعنی کہ آپ تجربے سے آپ تجربہ حاصل کرتے ہیں. آپ کی زندگی میں وہ نئی انسانیت کا کردار زیادہ سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے, یعنی کہ آپ مسیح کی پہچان میں مسیح کی مانند بنتے جاتے ہیں اپنی مصیبت کے ان تمام تجربوں سے گزرتے ہوئے. اور یہ مسیحی زندگی مشکلات سے, خوشیوں سے, نعمتوں سے پر ہے, اور اس میں ہر وقت خدا کی قدرت آپ کو حاصل ہے. سو صبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے, یعنی کہ آپ کی زندگی میں وہ چال چلن آپ کو حاصل ہوتا ہے جو یسوع مسیح چاہتا ہے, اور آپ کو پختگی حاصل ہوتی ہے.